जीव अधिकार चल रहा है, जिसमें जीवत्व नहीं उसका नाम अजीव होता है। जीव की पहचान पहले बता करके आए हैं। आगम ग्रंथों में जीव की पहचान जो बताए जाता है, अध्यात्म ग्रंथों में उससे बिल्कुल विपरीत या भिन्न बताया जाता है। आगम ग्रंथों में जीव का लक्षण उपयोग कहा है, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में जीव जीवत्व क्या है तो बताते हैं। ये सारे के सारे राग द्वेष विषय कषाद सब अलग कर दो, जो रहेगा वह जीव का स्वभाव माना जाएगा। उस प्रकार का जो जीव का स्वभाव है वह सिद्धों के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता, उसको हमें प्राप्त करना है। एक बार पर्व के दिन में ये कहा था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, किंतु तत्व कितने हैं तो 7 तत्व हैं ऐसा कहा। तत्वार्थ 7 हैं ऐसा न कह करके तत्व 7 हैं जिनको हमें प्राप्त करना है। तो कौन से प्राप्तव्य है तो ये बाद में मोक्ष तत्व प्राप्त, ये बाद में मोक्ष तत्व प्राप्तव्य। तो तत्व मैंने भाव, अपने को भाव प्राप्त करना है, अर्थ को तो प्राप्त करना ही नहीं, क्योंकि अर्थ तो पहले से ही प्राप्त है। अर्थ मैंने द्रव्य, जीव द्रव्य को अपने को नहीं प्राप्त करना, किंतु जीव तत्व को प्राप्त करना। और जीव तत्व में भी मोक्ष तत्वात्मक जो है वह जीव तत्व है, इससे अलावा और कुछ नहीं। इस स्वरूप का ही कथन अध्यात्म में किया जाता है। इसके ऊपर जब श्रद्धान मजबूत हो जाता है तो ध्यान अटल रह जाता है। और दृष्टि का अटल रखना और ध्यान का अटल बनाना बहुत अंतर है। आगम ग्रंथों में दृष्टि को स्थिर बनाया जाता है और अध्यात्म ग्रंथों में ध्यान को स्थिर बनाया जाता है। उपयोग को स्थिर बनाना और आस्था को स्थिर बनाना, इसमें बहुत अंतर है। आस्था स्थिर होने के उपरांत भी उपयोग स्थिर रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए उपयोग को स्थिर बनाने का कार्य स्वरूप की ओर देखने से प्राप्त होता है और दृष्टि को स्थिर करने का कार्य किसको करने से, तो अच्छा कहते हैं कि उसका उसकी स्थिरता हम स्वरूप की ओर नहीं किंतु अन्य द्रव्यों से पृथक एकमात्र श्रद्धान करने का होता है। पृथक करने का श्रद्धान लक्ष्य तो आगम ग्रंथों में है और पृथक करने के उपरांत उसमें स्थिरता लाने का कार्य अध्यात्म ग्रंथों में पाया जाता है। इसलिए बार बार उन्हीं भावों को भिन्न भिन्न गाथाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। कोई पूर्व पक्ष वाला पुनः कहता है, कथम जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्य लक्षण संबंधो नास्ति इति पृष्ठे, कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य लक्षण क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं हुई है। अच्छा पंथे मुत्तम सत्य, अच्छा 3 गाथाओं के द्वारा ही कहा, व्यवहार की बात कही जा रही है। पथि मार्गे मुष्यमानं सार्थं दृष्ट्वा व्यवहारिणो लोका भनन्ति। लोग क्या कहते हैं, मार्ग में किसी भी व्यक्ति को लुटता हुआ देख करके अर्थ सहित उस व्यवहारी लोग क्या कहते हैं, किं भनन्ति, मुष्यते एषः प्रत्यक्ष भूतः पन्थाः चौरैः, यह रास्ता यह मार्ग लुट जाता है चोरों के द्वारा, ऐसा लौकिक लोग कहते हैं। न च विशिष्ट शुद्ध आकाश लक्षण पंथा मुष्यते कश्चित अपि, कहीं भी कोई भी पंथ लुटता नहीं है जो विशिष्ट शुद्ध आकाश लक्षण वाला है, यानी रास्ता है तो एक प्रकार से आकाश है, तो आकाश तो नहीं लुटता लेकिन पंत लुटता है ऐसा कहा गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो वहां पर आशय को लेकर के ही चलता है। भरतैरावतो वृद्धिरासु षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य सर्पिणीभ्याम एक सूत्र आता है। आशय आचार्यों का क्या है उमा स्वामी महाराज जाने, लेकिन प्रश्न तो ये उठता है भरत और ऐरावत की वृद्धि होती है हानि होती है तो क्या दूसरा और क्या? भरत और ऐरावत में होती है कि हानि और वृद्धि होती है? संस्कृत में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में विभक्तियों का जो प्रयोग है वो दोनों में साम्य है। तो भरत ऐरावत यो कहने से भरत और ऐरावतकों की ये हो जाता की का अर्थ संबंध जुड़ता, अथवा दूसरा अर्थ निकालना चाहे भरत ऐरावत यो भरत और ऐरावतों में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के द्वारा वृद्धि और हानि हुआ करती है। अब दोनों में अर्थ निकल अलग निकल गया, उनकी या उनमें, इसमें अंतर हो गया। आशय क्या है नहीं कहा जा सकता, यह भी एक भाषागत विशेषता है। वहां पर आपको जैसा लगाना हो लगा लो, यह भी एक व्यवहार है, यह भी एक व्यवहार है। पथ लुट जाता है अथवा पथ पर कोई भी यात्री है वह लुट जाता है तो आपने घुमा करके अर्थ निकाला है, गाथा में तो ऐसा नहीं लिखा गया। पंथे मुस्संतस पश्चिदुन लोग अभनंति व्यवहारि मुस्सदीसु पंथु, लेकिन यह व्यवहार है। उसी प्रकार यहां पर भी लगा लेना चाहिए। इन सब को तो हम प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही व्यवहार अपने को करना चाहिए जिसके द्वारा सही सही रास्ता मिल जाए और निश्चय की ओर हमारी गति होने लग जाए। लेकिन यहां पर नहीं करता, ये एकांत पकड़ लेता तो उसका अर्थ अलग निकल जाता। तो न च विशिष्ट कश्चित भी, किंतु पंथानम आधारीकृत्य पथ को आधार बना करके तद आदेभूता जनामुष्यन्ते, उसके आधार पर जो चलने वाले हैं वे यात्रीगण या और कोई व्यक्ति लुट जाते हैं। इसी दृष्टांत गाथा, यह दृष्टांत की गाथा। अब जीव के साथ तथा तीन पथि सार्थ दृष्टांतेन जीवे अधिकरण भूते कर्म नो कर्म नाम शुक्लादि वर्णम दृष्ट्वा। इसी प्रकार जीव, देखो आप क्या क्या कह रहे हैं, पुद्गल में नहीं अधिकरण भूत जीव में कर्म और नो कर्मों का शुक्लादि वर्ण को देख करके जीवस्य एष वर्णो जनैर व्यवहारतः भणित इति दृष्टांत गाथा। इस प्रकार जीव का यह वर्ण है काला है पीला है धूला है या लाल है नीला है आदि आदि कहा गया, जिनेन्द्र भगवान ने इसको व्यवहार से कहा है, यह दृष्टांत गाथा। जब समय सार की पीठिका हो रही थी उस समय कई बातें आप लोगों के सामने रखी गई थी कि भगवान के गुणों का वर्णन करना, तो भगवान के गुणों का वर्णन करना सम्यक दर्शन की अपेक्षा से और कर्म की निर्जरा की अपेक्षा से हाँ करो। अनंत चतुष्टय को लेकर के कोई वर्णन करता है और कोई भी भक्त अनंत चतुष्टय के स्थान पर दूसरा कोई रख करके करता है तो वो भी चलता है। ये बहुत कम वर्णन आता है, 18 दोषों से रहित भगवान है। अध्यात्म ग्रंथों में ये नहीं आ पाता, बहुत कम आता है, किंतु वह एक प्रकार से भीतरी अनंत चतुष्टय को लेकर के या शुद्धत्व को लेकर के सबसे यही एकमात्र अर्थ परमिष्टि का लक्षण, द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि के अपेक्षा से। वस्तुतः अर्थ परमिष्ट को द्रव्य गुण और पर्याय के अपेक्षा से जानने की अपेक्षा जीव द्रव्य को ही द्रव्य गुण पर्याय के अपेक्षा जानो ना, क्या बात हो गई। इसमें भी घूम फिर करके वही बात आ जाती है कि अरहंत का द्रव्य कैसा होता है, अरहंत का गुण कैसा होता है, अरहंत की पर्याय कैसी होती है, और इनसे यदि वर्णन करते हैं तो इसमें भी कथंचित वहीं पर आएंगे। 13 गुणस्थान वर्ते होंगे, गुणस्थान तो है ही नहीं आत्मा में, लेकिन यह भी परम निश्चय जैसा नहीं माना जाएगा। अरहंत परमाष्टि को आप कैसे जानोगे, शरीर को मान लो गौण कर दिया, ठीक है, 13 गुणस्थान वर्ते तो कहोगे, तो 13 गुणस्थान जो है आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। तो अनंत भगवान के जानने से, उनकी भक्ति करने से भी आपके कर्म नहीं जा, किंतु वह डायरेक्ट आत्मा से संबंध रख रहा है इस अपेक्षा से कहा जाता है, और शरीर की अपेक्षा से नहीं। रत्नकरण श्रावकाचार्य यदि अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें ये कहा जाता है कि 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं। होते कैसे, कौन से गुण है, इसके बारे में नहीं कहा उन्होंने। 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं। क्षुधा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, क्षुत पिपासा, जरा बड़ापा नहीं होते, आतंक रोग नहीं होता, मरण नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, चिंता नहीं होती, विस्मय नहीं होता, निद्रा नहीं होती, रति नहीं होती, और परिग्रह आरंभ इत्यादि नहीं होते, ये कहा। अब इसमें होते कैसे भगवान ये नहीं बताया, इसमें सारे शरीर नेगेटिव पॉइंट है, निषेध वाचक है। संसारी प्राणी को पॉजिटिव की अपेक्षा से नेगेटिव के माध्यम से बहुत जल्दी हम रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन कुछ तार्किक व्यक्ति रहते हैं, हमें नेगेटिव क्यों, हमें पॉजिटिव बताओ। सभी को यह पल्ला पड़ जाए इस सब अपेक्षा से समझाया जाता है। जब कभी भी कोई लेख आ जाते हैं जो